हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस बुधवार के पीवी दोषी कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है। 13 अप्रैल 2016 वृंदावन धाम। आप लोग में से कितने लोग वृंदावन आए हैं? वाओ, बहुत लोग आए वृंदावन। आप नहीं आए अब तक? हरे कृष्णा। वृंदावन धाम जो है ना, वो जगह नहीं है एक्चुअली, वो एक व्यक्ति है, सो पर्सनालिटी बहुत डायनेमिक है, मतलब बहुत ही गतिमान है वो वृंदावन धाम। डायनेमिक को वो गतिमान कह सकते हैं, क्रियाशील है, मतलब वेरी एक्टिव और बहुत ही रिस्पॉन्सिव, यानी आप जो भी कुछ करते हो उसका रिस्पॉन्स भी मिलता है वृंदावन धाम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वृंदावन धाम में किसी जगह पहुंचते हो जहाँ पर कुछ लीला हुआ है, कुछ पास टाइम लीला हुआ है, तो अगर आप वहाँ जाकर कुछ गलत काम करोगे तो वो जगह आपको वो जो गौरव है वो प्रकट ही नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं से आपको जाकर वो समझ में नहीं आएगा क्या है वो। अगर आप वहाँ जाकर कुछ गलत काम करते हो तो, यानी कि झूठ बोलना, किसका अपराध करना, कुछ गॉसिप करना या नॉनसेंस बात करना, या कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, व्हाटएवर, तो वो जो धाम है वो व्यक्ति होने की वजह से अपना गौरव आपको प्रकट नहीं करेगा वो। और अगर आप वहाँ जाएंगे और आप अच्छे भक्त की तरह जप करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, हाँ अच्छी तरह से रहेंगे, सद्गुण में रहेंगे, सत्वगुण में रहेंगे, तो फिर वही धाम जो है जिस जहाँ आप गए हो वो पूरा आपका खुद का जो ग्लोरी है ना, गौरव, वो प्रकट करेगा आपके लिए। यू विल कम टू नो द ग्लोरी ऑफ दैट प्लेस एज सून एज यू गो देयर। मुझे आप भी आपके घर पे मैं आएगा सुन दो, अभी आप टीचर हो, एक्सपीरियंस टीचर हो, अब केम में भी काम किया है, तो आप कुछ बहुत कुछ नर्सिंग नॉलेज लोगों को दे सकते हो, लेकिन आपको लगेगा कि सामने जो आदमी आया ना वो बहुत तो अच्छा आदमी नहीं है, तो आप उसको नहीं सिखाओगे, सिखाओगे उसको? आपको लगेगा अच्छा विद्यार्थी है, अच्छे मूड में है, नम्र भाव में है, तो आप उसको नॉलेज देंगे, ऐसा होता है कि नहीं? मुझे आप बहुत एक्सपर्ट कुक है, और कोई लड़की आपके पास आती है कि मैडम मैंने सुना आप बहुत अच्छे कुक हो, मेरे को सिखाओ, लेकिन आप देखते हो कि ये बहुत सिंपल हार्टेड नहीं है, बहुत क्रूकेड लड़की है, इसको मेरे को एक्सप्लॉइट करना है और बिजनेस करना है, तो आप उसको पूरा नहीं सिखाओगे कभी, थोड़ा थोड़ा सिखाओगे बस, बट दिल खोल के सिखाओगे नहीं। दुर्योधन का और अर्जुन का भी ऐसा ही था, जब वो द्रोणाचार्य के पास सीखते थे ना, तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को पूरा विद्या नहीं दिया था, लेकिन अर्जुन को प्राइवेट में वो प्राइवेट क्लास लेके बहुत सारा सिखाते थे, और उसके आगे जाकर अपने बच्चे को अश्वत्थामा को, जो अर्जुन को भी नहीं सिखाते थे, वो अपने बच्चे को सिखाते थे, फर्क है ना उसके अंदर? द्रोणाचार्य तो एक ही है, उसके पास इतना नॉलेज है, उसमें से इतना सा वो आपको दे रहे हैं, इतना सा इनको दे रहे हैं, वो सारा अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो अर्जुन को पता चला कि ये रात को अलग प्राइवेट टाइम में अपने लड़के को अलग कुछ सिखाते हैं, तो अर्जुन वहाँ पर पहुँच गए और चरणों में गिर गए, बोले आप क्या करना है बताओ, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ सेवा आपकी, लेकिन मुझे भी वो सिखाओ। तो अर्जुन का वो नम्र भाव देखकर जो उनको नहीं सिखाना था वो भी उन्होंने सिखाया अर्जुन को। तो द्रोणाचार्य तो वही व्यक्ति है ना, एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसका व्यवहार इससे अलग है, उससे अलग है, उससे अलग है, एज पर रिलेशनशिप। समझे, आपके घर में कोई मेहमान आया जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन पति ने लेके आया उसको वैसे भी, तो आप कैसे भी करके उसको जल देके या कुछ शरबत देके पटा देंगे, लेकिन ऐसा एक मेहमान लेके आया जो आपको बहुत आपका प्रेम है, बहुत पसंद है, अच्छा रिश्ता है आपका, तो आप पूरनपोड़ी बनाएंगे, आप डोसा बनाएंगे, इडली बनाएंगे, और प्रेम से 4-5 आटे बना के खा खा करेंगे उसको, तो आपके पास पूरनपोड़ी बनाने की कैपेसिटी भी है, इडली की कैपेसिटी भी है, अच्छा बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन आप सबके लिए वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जो आपको लगता है उसके लिए करेंगे। धाम भी ऐसे ही होता है, धाम के जिस जगह पर लोग पाप करते हैं उसमें आपको कुछ भी लगेगा नहीं कि धाम में गए आप, आपको लगेगा क्या इधर ऐसा लगेगा, लेकिन धाम में अगर इस जगह जाएंगे जहाँ पर संत लोग रहे हैं, उन्होंने बहुत तपस्या किया है, बहुत भजन किया है, जप किया है, तप किया है, तो उस जगह आपको पहुंचते ही कुछ अलग अनुभव आएगा, जैसे आपको बरसाने में आया, सब लोग बरसाने में गए, उनको कैसा लगा बरसाने में? क्योंकि तो वहाँ पर एक संत रहते हैं, रमेश बाबा जी महाराज, उन्होंने करीब 60 साल तक वहाँ पर तपस्या किया है, भजन किया है, उनका रहने से वो धाम जो है ना वो डेवलप हो गया पूरा, प्रकट हो गया पूरा, और हम जब भी जाते हैं तो हमको वो वाइब्रेशन का आनंद मिलता है। तो वो चाहे वृंदावन हो या अयोध्या हो या बद्रीनाथ हो या श्रीरंगम हो या और कोई भी प्लेस हो, होली प्लेस, हर होली प्लेस एक व्यक्ति होता है जो उस धाम के रूप में भगवान की सेवा करता है। हर नदी एक देवी होती है, आपको विश्वास है इस बात पर? हर एक देवी, हर एक नदी एक देवी है, आप जैसी व्यक्ति वो नदी के रूप में भगवान की सेवा करती है, तपस्या करते हैं। जमुना जी ने भी तपस्या किया है भगवान की शादी करने के लिए, लेकिन है नदी के रूप में। सेवा, सेवा क्या है पूछेंगे, जॉब क्या है? तो नदी के रूप में लोगों का पाप स्वीकार करना, उनको पुण्य देना, उनको धन्य करना, उनका सेवा है। प्रयागराज जो है ना, त्रिवेणी संगम, वो भी एक व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति रूप में वृंदावन में स्नान करने के लिए आए थे, क्योंकि तो साल भर में सब जगह पर सब लोग मेरे पास आते हैं, मेरे जल में स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, तो सारा पाप हमारे पर जमा हो जाता है। फिर मैं एक दिन साल में अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन आता हूँ और एक सरोवर में स्नान करता हूँ मेरे पाप को शुद्ध करने के लिए, फिर वापस मेरी ड्यूटी करने के लिए वापस चला जाता हूँ। उस जगह पर आपको मैं लेके गया हूँ, पावन सरोवर नाम है उसका। तो वो स्वयं धाम के व्यक्ति जो है ना, पुरुष, वो वहाँ पर पहुँचे थे और स्नान करके वो काले रंग के हो गए थे पूरे पाप की वजह से, स्नान किया तो पूरे वापस तेज वाले हो गए, एफलजेंट हो गए, फिर वापस अपनी सेवा करने चले गए। तो उन्होंने वहाँ से क्रॉस किया, वहाँ पर देखा तो बहुत सारी देवियाँ भी स्नान कर रही हैं, लेडीज़। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा हूँ, मैं जमुना हूँ, सरस्वती हूँ, कावेरी हूँ, सिंधु हूँ, नर्मदा हूँ, सब बहुत सारा नाम लिया। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? कहते हैं कि साल भर लोग हमारे अंदर स्नान करते हैं और हम लोग को सब पाप स्वीकार करना पड़ता है, बहुत पाप जमा होता है तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन हम लोग आपके कुंड में आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, सारा पाप धो के वापस ड्यूटी पर जाते हैं। धाम व्यक्ति है बहुत। इसी मूड से हमको जाना चाहिए पिलग्रिमेज के, नॉट लाइक अरे अच्छा जगह है, घूम के आएंगे, वहाँ पर टिक्की खाएंगे, लस्सी पियेंगे, बांके बिहारी के बाहर लोग लोही बाजार में शॉपिंग करेंगे यहाँ हम आ जाएंगे, थोड़ा सा आनंद लेंगे, ऐसा नहीं जाना चाहिए। धाम एक व्यक्ति है और बहुत ही एक्टिव व्यक्ति है, वो डल व्यक्ति नहीं है क्या? आप 10 बात बोले तो भी वो बात ही नहीं करते, चेहरे पे लकीर भी हिलती नहीं क्या, अच्छा लगा बुरा लगा कि पता नहीं चलता, ऐसे व्यक्ति नहीं वो। वेरी रिस्पॉन्सिव, वेरी डायनेमिक, जैसे आपके घर में एक बच्चा होता है बहुत चंचल रहता है, बहुत यहाँ भागता है, उसके लिए कॉन्स्टेंट अटेंशन देना पड़ता है, वो कभी क्या करेगा, कभी क्या बोलेगा, भरोसा नहीं, कब क्या मांगेगा, कभी किसको क्या बोल देगा, नॉट बी ऑन वॉच आउट। मैं तो बच्चे का एक रॉन्ग एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन तत्पर्य क्या है, एक्टिविटी, बहुत एक्टिव है वो, डल ऐसा बैठा हुआ नहीं है, वही एक कोने में बैठा है, बात ही नहीं करता है। आप बोलेंगे इसको अफीम का गोली दिया क्या आपने शांत बैठने के लिए? क्योंकि लोग खेत में काम करते हैं ना, तो बच्चे को अफीम की गोली देते हैं और बैठा के चले जाते हैं, तो ऐसा ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, डल हो जाता है पूरा, रोज खिलाते हैं और खेत में जाते हैं। वैसा धाम नहीं है, धाम इज वेरी एक्टिव। तो मुझे अगर आप पूछेंगे वृंदावन में, मैं 55 दिन रहा अभी इस टाइम पे, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है कि वृंदावन धाम बहुत ही पावरफुल जगह है, और धाम में यात्रा के लिए जाना 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जैसे आप लोग गए हो, वो एक बात है, क्या बहुत लोग रहते हैं, अच्छा एक मूड रहता है, हम लोग देखते भी है कि टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बेस्ट टाइम पे लेके जाते हैं, तो वो भी एक बेस्ट रहता है, ठंडी का मौसम एकदम प्लेजेंट रहता है, सब कुछ, बहुत लोग साथ में रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, और ग्रुप में चले जाते हैं, यहाँ कथा सुनते हैं, वहाँ प्रसाद खाते हैं, इतना आनंद आता है उसके अंदर, तो हमको लगता है कि अरे कितनी अच्छी जगह है, यहीं पर रहना चाहिए। वो एक 3 दिन का अनुभव है, हम लोग गिन चुन के सोच समझ के आपको बेस्ट अनुभव देने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बार आप वहाँ पर लंबे टाइम के रहने जाते हो ना, तो आपको रोज़ यात्रा नहीं मिलती है कि रोज़ कोई बस जा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ महाप्रसाद, वहाँ रंगपंचमी हो रही है, हाँ वहाँ पर पूरन पोली मिल रही है, वहाँ पर दाल बाटी मिल रही है, वहाँ चूरमा लड्डू मिल रहा है, ऐसा रोज़ थोड़ी होता है। फिर उसमें सेवा करनी है, वहाँ पर रोज़ काम करना है। तो फिर उसका एक टेस्ट शुरू होता है, और वो टेस्ट में जो टिकेगा ना, उसको फिर धाम जो है ना, वो अश्वत्थामा जैसा द्रोणाचार्य से कहते हैं ना प्राइवेट में, फिर वो मिलेगा। समझ में आपको आया? जो अश्वत्थामा को प्राइवेट में सिखाते थे ना, वैसा बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप उस मूड में आओगे वहाँ पर। इसलिए धाम ये बड़ा डीप विषय है, बाहर से अच्छा लगता है बहुत, लेकिन धाम बहुत इंटेंस होता है। दूसरी बात, धाम का जो स्टे है ना, वो बहुत ही तीव्र होता है। तीव्र जितना आपको धाम देता है ना आनंद, उतना वो उतनी कसौटी भी लेता है आपकी। जैसे वो ज्योति पिंटो हमारी वहाँ पर आई थी कैंप में सेवा करने के लिए, न्यूज़ आया उसके लिए, उसका पति का एक्सीडेंट हो गया परदेश में, और वो इधर है, परेशान हो गई बिल्कुल। फिर वो मंदिर में चली गई ऊपर, और सब भक्तों ने और उन्होंने मिलकर राधा रानी को प्रार्थना किया। तो फिर नेक्स्ट डे न्यूज़ आया कि अभी ठीक है, बाद में न्यूज़ आया कि अभी अच्छे हैं, बाद में न्यूज़ आया कि अभी डिस्चार्ज होने वाले हैं। सब लाइन से हम लोग वहाँ पर विटनेस थे उसके लिए। तो उसका बरसाना स्टे इतना ऐसा इजी नहीं था। फिर दो तीन लड़कियों को बुखार आया, एडमिट किया, आईवी लगाना पड़ा, तप रहे थे बुखार में, हुआ कि नहीं, होता है ना। कड़वा चौथ तो सब प्रकार के अनुभव होते हैं यात्रा में। किसी का फ्रैक्चर होता है, किसी का बुखार आता है, किसी का ऑपरेशन भी हो जाता है क्या यात्रा में। तो हम लोग उसको कृपा मानते हैं भगवान की, ऐसा नहीं मानते कि क्या बैड लक था मेरा। धाम में जो भी होता है ना, आपको लगेगा बुरा हो रहा है, लेकिन धाम में जो भी कष्ट होता है वो आपको हजारों गुना शुद्ध कर देता है। वही बुखार यहाँ पर आएगा तो आपका इतना प्योरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन वैसा ही उधर हो गया तो आपको हजार गुना शुद्धि प्राप्त होगी उसकी। भगवान आपको कृपा से अपने, जिसको कृपा करते हैं उसको ही थोड़ा तो कष्ट होता है। आप लोग अभी समझाओगे, किसी ने नेबर के लड़के ने चोरी किया, आपने डांटोगे उसको, आपका क्या कनेक्शन है उसके साथ? लेकिन आपके बेटे ने चोरी किया तो क्या करेंगे आप? मना क्या करें, इसे करोगे ना क्या अपन, ऐसा बोलेंगे उसको? अपना बेटा है तो आप प्रेम के वजह से डांटेंगे उसको? तो लड़का बोलेगा, नेबर के बच्चे ने चोरी किया, तुमने डांटा नहीं उसको, मेरे को क्यों तो डांटती हो? तो मम्मी क्या बोलेगी, तू तो मेरा है ना। वो दीवार के डायलॉग बोलूँ क्या आपको मैं? दीवार में वो अमिताभ बच्चन क्या बोलता है, जाओ उससे पहले साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिखा था, जाओ उससे साइन लेके आओ जिसने मेरी माँ को ईंट पे गाली दिया था, जाओ उससे साइन लेके आओ उसने ये किया था। तो माँ क्या बोलती, बहुत होशियार हो गया तू, अभी जिसने मुझे ईंट पे गाली दिया था वो तेरा कौन था? कोई नहीं था। जिसने तेरे हाथ पे लिखा था मेरा बाप चोर है वो तेरा कौन था? कोई नहीं था। जिसने उधर बुरा काम किया था, हमारे ऊपर अन्याय किया था वो तेरा कौन था? लेकिन तू तो मेरा अपना बेटा था ना, तू तो मेरा अपना बेटा है, मेरा अपना खून। तो डिफरेंस है कि नहीं उसके अंदर, समझो इस बात को। अपनेपन पे ही दंड मिलता है और प्रेम मिलता है। अपनापन नहीं होगा तो कोई दंड देने को क्यों आएगा आपको? मेरे जाओ, जहाँ जाना है नरक में चले जाओ, मेरे को क्या करना है? अपना बेटा अगर ऐसा करता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो डांट भी जो मिलती है ना वो प्रेम से मिलती है। तो भगवान भी धाम में जो कष्ट देते हैं वो प्रेम की वजह से देते हैं। अगर आप सिंसियर डिवोटी हो तो ये आपकी कसौटी होती है, नहीं तो आओ और जाओ, जलेबी खाओ, टिक्की खाओ, लस्सी पियो, जाओ। ये जो आएगा वापस तो फिर उसके लिए भगवान ज़्यादा कृपा करते हैं। और वृंदावन धाम का कैसा है ना, राइट में देखो होली प्लेस, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो होली प्लेस, लेफ्ट में देखो होली प्लेस, सामने देखो होली प्लेस, पीछे देखो होली प्लेस। ऐसा है, जब रास्ते पे चलते हैं ना हम लोग तो ये इमली तला, मदन टेर, जमुना जी, भ्रमर घाट, केशी घाट, ऐसे है। रिक्शा में बैठ के जाओगे तो यहाँ वहाँ देखते रहो बस, सोचते रहो, अरे हाँ जमुना जी आ गई, अभी हाँ इमली तला आ गया, अरे अभी मदन मोहन का मंदिर आया, अरे अभी अद्वैत वट आया, अभी बांके बिहारी जी का मंदिर आया, अरे अभी यहाँ पर श्याम सुंदर का मंदिर आया, राधा वल्लभ जी का मंदिर आया, अभी यहाँ पर प्रेम सरोवर आया, अभी यहाँ पर पीली पोखर आया, ऐसा है वृंदावन, चारों तरफ से आप घिरे हुए हो पवित्र स्थानों से, हवा भी आ रही है तो कृष्ण की याद आती है। ऐसी अनोखी जगह है वो, वहाँ पर आनंद ही आनंद है, लेकिन कष्ट भी उतना ही है। जैसे हमारे डॉक्टर अवनीश पांडे ना, वहाँ पर जब पहले गए तो उनकी वाइफ को 3 बार टाइफाइड हुआ, एक के बाद एक के बाद एक, और चौथी बार फ्रैक्चर हो गया, ऐसे ही खड़े खड़े पाँव ट्विस्ट हो गया, बोन टूट गया, और 6-8 वीक्स तक हिली नहीं हुआ वो, इतना कड़ोर परीक्षा होती है वहाँ पर। लेकिन आज उनको उसकी वजह से इतना धाम को प्रेम है, बोला किसी भी कीमत पर मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ उसको, इतनी गर्मी है, इतनी सर्दी है, बहुत सारा होता है, लेकिन आप बोलेंगे ना बॉम्बे जाना है तो नहीं नहीं बॉम्बे नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि वहाँ पर ना एक दिव्य आनंद है, जहाँ पर रोज़ सुबह आप उठेंगे, मंगला में जाएंगे, भगवान को देखेंगे, या तो मंगला मिस हो गए तो 7 बजे भागेंगे दर्शन करने के लिए, फिर कभी बोट उत्सव है, कभी महाराज कोई आए हैं उनका लेक्चर चल रहा है, कभी कुछ उत्सव है, कभी जन्माष्टमी है, कभी कुछ है, कॉन्स्टेंटली। आपके यहाँ होली कितने दिन की होती है? 1 दिन। क्या बॉम्बे तुम लोग यार, 45 डेज की होली होती है, बोलो। हर रोज नया नया उत्सव, उसमें क्या होता है, 45 डेज करते क्या है, क्या करते क्या है। तो आज इस गांव के पुरुष वहां उस गांव में जाएंगे, वहां की लड़कियां डंडे से उनको पीटेंगी और रंग देंगी, फिर नेक्स्ट डे उस गांव में इस गांव के पुरुष इस गांव में आएंगे, यहाँ की औरतें उनको डंडा लेंगी, फिर एक दिन में यहाँ के पुरुष वहाँ जाएंगे इन्वाइट करने के लिए, तो वहाँ की स्त्रियाँ उनको लड्डू खिलाएंगी, लड्डू मार होली बोलते हैं उसको, एक छड़ी मार होली। तो बलराम जी एक दिन बलराम जी होली खेलेंगे, तो वो बलराम जी को राजा रानी डंडा मारेंगे तो वो अपने हल से उसको पकड़ेंगे, तो वो छड़ी मार होली। तो एक दिन यहाँ के पुरुष, एक दिन वहाँ के पुरुष, एक दिन वृंदावन के रंग भरनी होली, राधा वल्लभ जी बांके बेरे सब होली खेलते हैं, उनको बाहर लाके झूला में खेल झुलाते झुलाते होली का रंग देते हैं। इतना सुंदर उत्सव होता है ना कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आप देखते हो बॉम्बे में वो कितना घिलौना और कितना घटिया है, ऐसा लगेगा आपको, नहीं आपको लगेगा कि क्या है, आई डोंट वांट टू गो देयर, इतना गंदा बिहेवियर करते लड़का लड़कियाँ, क्या करते हैं, कीचड़ उठाते हैं, ऑयल पेंट और खुजली वाला पेंट, क्या क्या करते हैं, गले में पूरा पूरा लाल करके फोड़ी आ गए पूरा, बस वो लगाया ना, ये होली नहीं है, ये उसका विकृत स्वरूप है। लेकिन वहाँ पर हर रोज़ नई कहानी है, आज नवमी है, नवमी की एक कहानी है, दशमी की एक कहानी है, एकादशी की कहानी है, द्वादशी की कहानी है, 13 की एक कहानी है, 14 की है, 15 की भी एक कहानी है, तो होली का उत्सव है उसकी एक कहानी है, तो होली का में यहाँ क्या होता है वहाँ क्या होता है, ऐसे जगह जगह अलग अलग उत्सव है। फिर वो होली भी हो गई तो उसके बाद 5 दिन और होली चलती है, 5 दिन बाकी वाले बलराम जी की होली चलती है सेपरेट, उसको होरंगा कहते हैं। तो बलराम जी ने राधा रानी से कहा था कि हमको होली खेलनी है आपसे, राधा रानी बहुत शर्मा गई, अरे तो जेठ है मतलब बड़े देवर हैं वो, उसके बाद होली नहीं खेलते हैं, वो तो प्रणाम करते हैं उनको। तो वो कृष्ण के पास आई, मैं क्या करूँ, उन्होंने होली खेलने का न्योता दिया है। तो वो कहते हैं कृष्ण उनको कहते हैं, अरे वो तो राम अवतार में लक्ष्मण थे ना छोटे भाई, वो मूड में आप बोल रहे हैं, आपको वो बड़े भाई के मूड में नहीं बोल रहे हैं, वो राम अवतार के छोटे भाई के मूड में बोल रहे हैं, तो आप खेलो होली। तो फिर तय हो गया, फिर वो खेलने लगे, तो जो लट्ठी मार चालू किया उन्होंने, तो बलराम जी ने अपना हल लेकर वो लाठी को रोका, होरंगा कहते हैं उसे, कई जगह पे होती है वो, बलदेव जी का जहाँ मेन स्थान है वहाँ होती है, जावट गाँव में होती है, बठेन गाँव में होती है, अलग अलग। फिर एक दिन होली के दिन एक नृत्य होता है, उसका नाम क्या मालूम है, चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य, चरक मतलब चक्र, चरकुला नृत्य बहुत ही फेमस है वो, एक कल्चरल डांस के रूप में उसकी बहुत प्रतियोगिता भी होती है, और ब्रज का फेमस डांस है वो। उसमें क्या होता है पता है, बैलगाड़ी का पहिया होता है ना बड़ा एकदम नॉर्मल साइज का, उसमें स्पोक होते हैं, आरी होते हैं ना, वो सब पर दीपक लगाते हैं, वो बड़े बड़े दीपक लगाते हैं। अभी एक बैलगाड़ी के चाक में कितने दीपक बैठेंगे आप सोचो, 50 तो बैठेंगे कम से कम। उस पर और थर थर लगाते हैं, एक थर, दूसरा थर, तीसरा थर, फिर वो ऐसे होता है, ऐसे होता है वो, और गोल होता है ऐसे। फिर वो सब सजाने के बाद में, रंगोली करने के बाद में, उस पर दीपक रखने के बाद में, वो एक लेडी के सर पे दे जाता है, और वो सर पे रखे वो डांस करती है, इतना सुंदर डांस करती है कि आप देखते रह जाओगे। इतने सारे दीपक, इतना बड़ा बैल का पहिया, उधर एक कपड़ा रख के, कुशन रख के फिट करते हैं उसको, और फिर वो डांस करती है। और एक नहीं, कई लोग डांस करते हैं। आपने मोर को डांसते हुए देखा कभी? वो नाचता ऐसा एकदम फास्ट एक्टिंग करता नहीं, वो धीरे धीरे ऐसे 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 करता है, लेकिन वो बहुत ही एकदम अट्रैक्टिव करता है। वो जो भी करता है वो ऐसे ऐसे पिसारा फुला के इतना सुंदर डांस करता है। उस तरह से स्लो डांस होता है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही सुंदर। वो केवल एक ही गांव में होता है पूरे ब्रज के अंदर, 84 कोस की भूमि के अंदर एक ही गांव है, मुखाराई गांव। वो मुखाराई गांव में होता है वो, और किधर नहीं होता है ट्रेडिशनली। बाकी लोग परफॉर्म करते हैं लेकिन उत्सव के रूप में वो, उसका सिग्निफिकेंस वो गांव से है। तो लोग आज यहाँ जा रहे हैं होली देखने के लिए, आज वहाँ जा रहे हैं, आज दशमी के दिन वहाँ जा रहे हैं, फिर उसके दिन बलदेव जा रहे हैं, उसके बाद में मुखारा गांव में जा रहे हैं, उसके बाद में फालेन गांव में जा रहे हैं होली देखने के लिए। उधर क्या हुआ था? उधर जैसे अभी आप बैठे हो, जब आपका नाम क्या प्रभु जी? हाँ राहुल। राहुल जहाँ बैठा है, राहुल जहाँ बैठा है वहाँ से ये दीवाल तक इतना बड़ा होली का कुंड होता है, उसका पूरा तुम्हारा जितना कमरा है इतना पूरा होली, और उसकी अग्नि जो है वो 3 मंजिल तक, कितनी ऊंचाई होती है? 30 फीट, उतना तक इतनी बड़ी अग्नि जल रही है, और उसमें से एक आदमी चल के जाता है और उधर से निकलता है। सबके आंखों के सामने टीवी पर दिखाते हैं, पेपर में फोटो आता है, हर साल में 21 दिन का व्रत करता है वो आदमी, और हर साल उसके परिवार के लोग या वो या जो भी बहुत सारे लोग होते हैं उस परिवार में, आज इसका ड्यूटी है तो फिर वो उस उत्सव में 21 दिन तपस्या करेगा, उपवास करेगा, मंत्र जप करेगा, और उस दिन केवल एक कटी वस्त्र पहन के, इधर एक धोती थोड़ी सी छोटी सी धोती पहन के, पूरा ओपन शरीर में यहाँ से निकलेगा, अग्नि से प्रवेश चल के हुए वहाँ से बाहर निकलेगा, उसको कुछ नहीं होगा। लोग उसको फिर चरण छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे उससे। ये प्रहलाद और होलिका का जो हुआ था ना लीला, उसके याद में करते हैं वो जो व्यक्ति है वो प्रहलाद का प्रतिनिधि है, प्रहलाद के भाव से वो प्रवेश करता है, और होलिका देवी को जला देते हैं। वो एक अलग टाइप की होली होती है वहाँ पर, किसको पता है? नोबडी नोज। हमारे यहाँ पर एक दिन गंदा काम देखते हैं हम लोग, उस दिन बाहर नहीं निकलते हैं, खिड़की में से देख रहे हैं लड़के लड़के क्या कर रहे हैं गंदा काम, वी फील सो डिसगस्टेड। और 45 डेज की होली होती है, इतना आनंद होता है ना, एवरी बडी इज बबलिंग विथ हैप्पीनेस। मैंने एक चीज़ देखा, वो होली के दिन, नवमी के दिन में, जब एकादशी के दिन में जो परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की, लाखों लोग परिक्रमा लगाते हैं 12 o'clock midnight से लेके नेक्स्ट 12 o'clock तक, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर वॉकिंग डूइंग प्रदक्षिणा, और इतना आनंद में रहते हैं, सबको लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, और प्रेम से रंग फेंकते हैं, और पिचकारी लगाते हैं, कोई वल्गारिटी कुछ नहीं है, बड़े प्रेम से। मैं मंदिर से आ रहा था तो एक लड़का आया, दो बड़ी 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 पिचकारी लेके ऐसा चल रहा था, तो मैं अपना मंदिर से धोती कुर्ता पहन के आ रहा दर्शन करके, और मैं एकदम क्लीन था, मेरे पर कहीं डाग वग नहीं था। तो मुझे बोलता है प्रभु जी होली खेलो ना, बोला खेलो। तो उसने ऐसा लेफ्ट हैंड से अपनी पिचकारी उठाई और खेला, बोला बस ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, आया चरण छुआ चला गया। ऐसा आपको मिलता है अनुभव यहाँ पर मुंबई में किधर? मुझे इतना अच्छा लगा वो दिन, आई वाज सो हैप्पी एक्चुअली। मैंने पूरा मेरा कुर्ता रंगवाया उससे, मैं जब बस बोला तो रुक गया, हो आया चरण छुआ चला गया, और कोई ऑयल पेंट कोई गंदा ऐसा कुछ नहीं, तो कुछ जगह करते हैं लेकिन आमतौर पर एवरीबडी इज़ हैप्पी, लाफिंग स्माइलिंग वेरी ब्यूटिफुली, नो वल्गैरिटी, नो बैड बिहेवियर, एंड फुल सिटी इज हैप्पीनेस, बबलिंग हैप्पीनेस। तो यू हैव टू बी ऑल्सो फील हैप्पी ओनली ना, तो गीत गा रहे हैं रस्ते में, परिक्रमा दे रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, कुछ अलग अलग वाद्य बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं लेडीज एंड जेंट्स टुगेदर, लोगों को खाना खिला रहे हैं, किसी को फीड दे रहे हैं, इतना बढ़िया उत्सव। अभी मैंने आपको एक उत्सव का वर्णन किया, तो दो टाइप की होली होती है, एक होती है प्रेम की होली और एक होती है राक्षस होली। हाँ यहाँ जो राक्षस होली का पार्ट है उसका यहाँ पर देखते हैं हम लोग परिणाम, लेकिन प्रेम की होली राधा कृष्ण के बीच में होती है, वो नवमी से शुरू होती है, बहुत आनंद से उसमें राधा कृष्ण का लीला है, बहुत सुंदर अलग अलग स्टोरीज हैं उसके, कैसे कैसे होली खेलते हैं वो। और राक्षस होली का मतलब क्या है? जिस दिन होलिका देवी ने प्रहलाद को जलाने का कोशिश किया, क्योंकि उसको विष दिया तो वो नहीं मरा, सांप में डाला तो नहीं मरा, हाथी के पाँव में दिया तो भी हाथी ने पाँव नहीं दिया, और पहाड़ से फेंका तो भी उधर नहीं मरा, पानी में फेंका तो नहीं मरा, हर तरह से शस्त्र से घुसाना कोशिश किया, शस्त्र चला नहीं उसके ऊपर। तो एक बात याद आई उसको, अरे मेरी बहन को ना, मेरी बहन का नाम होलिका देवी है, उसको वरदान मिला है अग्नि से कि जब भी अग्नि लगेगी तो अग्नि से वो जलेगी नहीं, अग्नि विल नॉट बर्न, चलो उसको उपयोग करते ना, अभी उसको लाते हैं और वो उसको गोद में लेके बैठ जाएगी और हम आग लगा देंगे, फिर प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी, ये सोचकर उसको बिठा दिया और आग लगा दिया। तो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जल गई, तो जलने लगी तो चिल्लाने लगे, अरे ब्रह्मा 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 देव, आपने वरदान दिया था, क्या हुआ उसका? उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने बोला था कि तुमको वरदान दिया था, जब तुम पर आग का संकट आएगा तो तुम्हें आग नहीं जलाएगी, तुम किसी को मारने के लिए प्रयास करोगी तो आपको फुल प्रूफ नहीं दिया उधर, तो ये तुम तो अपने भांजे को मारने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको जलना ही है और मरना ही है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। और परेशान हो गई वो और जलकर खाक हो गई, और प्रहलाद जी ऐसे बाहर आ गए। तो उसकी शरीर की राख, उसको जलाने को लगी वस्तु की राख, सब वहाँ राख जमा हो गई, तो ये देखकर राक्षस लोग पागल हो गए, क्योंकि राजा का ऑर्डर है कि इसको मारना है, नहीं मारेंगे तो खुद को मारेंगे वो, मतलब दंड देंगे कि आपने आदेश का पालन नहीं किया। तो उनको बहुत डर लगा, अरे अभी इससे भी बच गया ये, तो हम क्या करेंगे? तो एकदम पागल हो गए, उन्होंने वो राख लेके सब पे ऊपर मारा, ऐसे आपने लिया मुझ पर मारा, मैंने लिया आपको मारा, सब पे मारा, परेशान होकर एकदम दिमाग पूरा खराब होकर, फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने वो जो राख थी उसको, कीचड़ था जो पानी वानी सब मिलके कीचड़ था, वो सब उठा उठा के सब पर मारा उन्होंने। उसको हम लोग कहते हैं धूलि वंदन, धुलेटी कहते हैं उसको, इसलिए गटर का कीचड़ निकाल के सबको फेंकते हैं। वो राक्षसी होली है, वो पागल लोगों ने पागल होकर मनाई हुई होली है, वो उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया है उधर, राक्षस होली। और सुनिए आगे, रोज शाम को एक अलग उत्सव होता है होली के दिन, वसंत पंचमी को होली आरंभ होती है, वसंत पंचमी मतलब कितनी, 45 डेज बिफोर, रोज शाम को भगवान को रंग चढ़ाते हैं और मंदिर में रंग लगाते हैं लोगों को। कैसे रंग लगाते हैं? ऐसे लेते हैं और ऐसे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं, सीनियर लोग होंगे तो उनको हाथ पे लगाते हैं और प्रणाम करते हैं, इक्वल फ्रेंड्स होंगे तो ऐसे गाल में लगाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, जाके प्रेम से महाप्रसादी रंग जो है उनको चढ़ाया हुआ प्रसाद है वो लेके सबको लगाते हैं। ओके, फिर जब होली का मौसम बढ़ते बढ़ते नवमी में आता है, नवमी, तो उस दिन बहुत बड़ी होली होती है। तो बाद में मूड ऐसा है कि राधा कृष्ण रोज दिन भर होली खेलते थक जाते हैं, तो पद्मावती देवी उनको झूले में बिठाते हैं शाम को, उसको कहते हैं फूल डोला, फूलों का जो मोगरा है, सुगंधित है ना, चमेली है, चाफा है, उसका सुंदर झूला बनाते हैं, उसके अंदर उनको बिठाते हैं ठाकुर जी की मूर्ति को, और हल्का हल्का झुलाते हैं, जोर से धोखा देते नहीं, हल्का हल्का झुलाते हैं, और झूले में बैठकर उनको ठंडाई पिलाते हैं, उसका भोग लगाते हैं, जलेबी का भोग लगाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं, और हल्के हल्के चरण दबाते हैं उनको, थक गए ना अभी वो, उसको कहते हैं श्रम परिहार। रोज शाम को भगवान को झुलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पैर दबाते हैं और बाद में सुला देते हैं। नेक्स्ट डे फील्ड फुल डे होली, वापस शाम को फुल डोला, रोज शाम को अलग अलग टाइप खाना बनाते हैं और खिलाते हैं। कितना अच्छा उत्सव है, आपको सुनकर भी आनंद आता होगा, अगर नींद नहीं आती होगी तो आनंद आता होगा शायद। हाँ वर्क मतलब, हाँ अभी कैसे है ना, इतना सुंदर सिस्टम है एग्रीकल्चर में, क्या दिन भर काम होता है? क्या साल भर काम होता है? क्या कुछ मौसम आता है उसमें बहुत दिन भर वो आवनी पेरनी सब करना पड़ता है, लेकिन बाद में बहुत दिन फ्री रहते हैं उसके बीच में, फिर कटाई का समय आता है, फिर काटते हैं सब लोग, फिर कुछ दिन बहुत दिन काम करते हैं और खेत काट देते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको मशीन लाकर धान्य निकालते हैं, फिर उसका आटा बनाते हैं, जो भी कुछ है। खेती ऐसा बेस्ट बिजनेस है, आप बहुत साल बहुत समय तक फ्री रहते हो और कुछ दिन काम करना पड़ता है, इज नॉट ट्रू? आपके गांव में खेती राइस की है, कितना दिन काम करते हैं आदमी? सारा बल काम करते क्या? नहीं, कल्चर ही ऐसा है, बहुत टाइम भजन के लिए मिलता है, प्रे करने के लिए, भक्ति करने के लिए, थोड़ा टाइम मेहनत करना है, साल भर का खाना जाएगा, एक एकड़ जमीन होगी ना आपके पास, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेहमानों को, बहनों को, बहुओं को, लड़कियों को बांट सकते हैं धान्य, और आपका भी 12 महीने का आपके पास पूरा स्टॉक है, कोई चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है। ओनली 1 एकड़ भी, आधा एकड़ भी होगा तो भी चलेगा, आजकल तो 2 क्विंटल भी काफ़ी है, पूरा साल भर का आपका सब्जी और बांदावर्ती धान्य कुड़ीत चवड़ी सब हो जाएगा आपका। इधर का सिटी में कैसा है, आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, बाप रे 6 बजे जाएगा रात को 11:30 बजे आएगा, दिन रात टारगेट टारगेट करेगा पूरा, उसका क्या क्या उसका रिपोर्ट देगा, वीकली रिपोर्ट, ये मीटिंग वो मीटिंग, अघोरी कर्म है सभी, और 12 महीने लगा रहे ना, दिन दिवाली हो या दशहरा हो या होली हो, आपको तो 12 घंटा उधर आईटी में काम करना ही है, ये अपना कल्चर नहीं है। अपना कल्चर कैसा, आराम से खेती करने का फर्स्ट क्लास, एक गाय रखने का, दूध पीने का उसका, उसको चराने का फर्स्ट क्लास, प्योर खाना खाने का, प्योर हवा में आनंद करने का, फिर क्या है, उत्सव ही उत्सव है। अभी देखो ना, तृतीया का दिन ना, चैत्र अभी पाड़वा हुआ ना, 8 तारीख को पाड़वा था, 10 तारीख को क्या था, 10 तृतीया था, 3rd मत्स्य अवतार भगवान का हुआ ना, उसका जो बर्थडे था वो दिन। कल क्या था, षष्ठमी, क्या कहते हैं उसको, यमुना षष्ठी, कल यमुना देवी का जन्मदिन था, और रामानुजाचार्य का भी जन्मदिन था कल, 999 जन्म, 999 ईयर्स का कल बर्थडे था उनका, नेक्स्ट ईयर 1000 ईयर का बर्थडे है उनका, रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी के अवतार थे। और परसों क्या है, रामनवमी, 22 तारीख को क्या है, हनुमान जयंती, आगे गिनते जाओ मालूम पड़ेगा, नरसिंह जयंती आएगी, फिर अक्षय तृतीया आएगी 9 तारीख को, अगले फेस्टिवल ही फेस्टिवल है इंडिया में, हर एक की अलग अलग स्टोरी है, और हर चीज़ मनाने जैसी है। गुड़ी पड़वा के दिन मैंने यज्ञ किया किसी के घर पे, उधर गुड़ी चढ़ाया मैंने किसी घर पे, सब समझाया गुड़ी में क्या क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों चढ़ाते हैं उसको, नीम का पत्ता क्यों खाना चाहिए, कैसा हेल्थ के लिए अच्छा है, उनको सब समझाया मैंने, और अपने हाथ से एक एक आइटम लगा के मैंने गुड़ी खुद चढ़ाया और यज्ञ किया उनके घर पे। तृतीया के दिन सिद्धानंद हॉस्पिटल में यज्ञ किया, सबको समझाया कि ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, क्या क्या उसका मीनिंग है, सब समझाया, लोगों ने लेजिम खिला उस दिन, और उद्घाटन किया हॉस्पिटल का। मैंने कहा ये इंडिया का कल्चर है, आनंद एवरीडे, आनंद नाचना नृत्य करना, आनंद से गीत गाना, वाद्य बजाना, नए नए ड्रेसिंग, सब लोग सारी औरतें नौवारी ड्रेस पहन के आए थे, जितने भी स्टाफ लोग थे सब लोग नौवारी पहन के आए थे, बैग में लेके आए थे, वहाँ पर पंजाबी में आए, वहाँ पर जाके रूम में जाके सब लोग ने नथ वथ पहन के, अम्बाड़ा गजरा उसके ऊपर, और नौवारी और कोल्हापुरी चप्पल और पताका हाथ में और डिंडी ताड़े आ सब कुछ करके पूरा हॉस्पिटल में एंट्री किया हर जगह पे, और उद्घाटन किया सबका। फिर हमारे सिक्योरिटी लोगों ने अभंग गाए विट्ठल के और पुंडलिक के, फर्स्ट क्लास सावंत सिक्योरिटी गार्ड ने, आनंद है कि नहीं उसके अंदर। फिर हमको पता नहीं है, किसको पता है यमुना षष्ठी कभी थी, तो यही तो है इंडिया का कल्चर, हर दूसरे दिन फेस्टिवल है यहाँ पर। कौन दुखी होगा बताओ, कौन फ्रस्ट्रेट होगा, किसको डिप्रेशन आएगा, साइकेट्रिस्ट को काम ही नहीं कुछ, साइकेट्रिस्ट क्यों बना तू कोई तो बीमारी नहीं यहाँ पर साइकेट्रिस्ट वाला, अभी लेकिन होने लगा है ना, क्योंकि शहर का कल्चर सब जगह फैल गया, तो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन ये सुसाइडल टेंडेंसी ड्रग एडिक्शन इतना तनाव क्यों है, क्योंकि सिटी का प्रेशर है आपके ऊपर। गांव में जाओ आपको सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा एकदम, जाते ही शुद्ध हवा आएगी 4 घंटे में फ्रेश, रात को 5 बजे उठ गए क्या है, 5 बजे सोना है लेकिन नींद नहीं आ रही है, क्योंकि 4 घंटे में आदमी फ्रेश हो गया इतनी अच्छे से हवा खा के। वो श्रद्धानंद में गया ना मैं, सारी खिड़की खोल दिया, पंखे बंद कर दिए, इतनी हवा आ रही है, वो एकदम शुद्ध हवा गाँव की, इतना फ्रेश होके उठे हम लोग सुबह, सुबह उठ के पूरा निर्मल गाँव को राउंड लगा के आए वॉकिंग में, जब करते करते फोटो निकाला सनराइज का फर्स्ट क्लास, निर्मल कुंड में दर्शन किया। कहने का मतलब क्या है, हम लोग धाम की बात कर रहे थे, धाम का निवास, तो इतना आनंद है उसके अंदर, इतना भी होली का भी मैं और बोलते जाऊंगा तो अभी तो रात तक बैठूंगा मैं, कि होली का मतलब और क्या क्या होता है आनंद वहाँ पर, हर एक दिन में लिख के रखा है मैंने क्या क्या किधर किधर क्या क्या हो रहा है, ये मैंने लिखे रखा है अभी, नवमी को किस जगह क्या होता है, दशमी में किस जगह पर क्या होता है, उसकी लीला क्या है, वो सब नोट करके रिकॉर्डिंग करके रखा है मैंने। और होली की जगह जहाँ पर मैं गया था, जहाँ पर भी होली होती है, पहले होली खेलने के पहले 3 घंटा गायन होता है, गीत गाते हैं उसका, फिर वहाँ से आशीर्वाद लेकर फिर जाते हैं, फिर होली खेलते हैं। जब लट्ठामार होली होती है ना, तो लड़कियाँ जो है सज सज के आती है और ठाप ठाप मारती है, वो शील्ड पकड़ के सब लोग वो झेलते हैं उसको। उसके बाद में जिसके ऊपर वो चलाया गया है वो जेब से मिठाई पैसा निकालता है और वो गोपी को देता है, उसके चरण छूता है, ऐसा भाव है। क्या भाव है कि कृष्ण भगवान जब होली खेलने आते हैं तो वो होली में हारने के लिए आते हैं, जीतने के लिए नहीं आते हैं। और जो होली में हारता है उसको जीतने वाले को दंड देना पड़ता है, मतलब उसको कहते हैं फगुआ, फगुन का महीना ना, तो उसको फगुआ नाम दिया है। फगुआ मतलब क्या, मिठाई होती है उसमें, उसमें गहने होते हैं, उसमें कपड़े होते हैं, उसमें बहुत सारी कीमती वस्तु होती है जो कृष्ण भगवान ऑलरेडी स्टॉक में लेके आते हैं, प्लान्ड वे में आते हैं कि मुझे हारना है मुझे देना है सबको प्रेम से। सब सखा भी लोग आते हैं अपने घर से, सब कुछ मिठाई वो लेके आते हैं और खेल में हार जाते हैं, और हारने के बाद में सब गोपी के चरण छूते हैं और उनको मिठाई दगीना कपड़े सब दे देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, ये कृपा लेते हैं और चले जाते हैं। ये उत्सव है। तो वहाँ के महाराज जी बता रहे थे कि होली का सार ही ये है, हारना। ठाकुर जी जो सबके दुनिया के मालिक है वो अपने भक्तों से हारने के लिए आते हैं वहाँ पर, वो खेल खेलते हैं इसमें वो हार जाते हैं, हारने के बाद अपने भक्तों को अपनी गोपियों को सबको भर भर के दान देते हैं और कृपा मांगते हैं कि अगली बार भी बुलाना खेलने के लिए। जस्ट सी कितना स्वीट उत्सव है ये, हम लोग आज क्या देख रहे हैं किधर है स्वीटनेस, गंदा ही गंदा है। कोई अच्छी लड़की जाएगी नहीं रोड रोड पे, गंदी लड़कियाँ जाएंगे, अच्छे लड़के कोई जाएगी नहीं, इतना बैड बैड कल्चर है उधर। आपके बाल खराब कर देंगे, आपकी स्किन खराब कर देंगे, आपका क्या करेंगे, आपको क्या क्या गंदगी में बीमार पड़ जाएंगे आप। और बचपन से आपने अगर वही देखा है तो आपको लगेगा यही उत्सव है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन उसका जो मूल स्टोरी है आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप जानकार लोगों के पास में बैठेंगे और वहाँ जाके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा अरे ऐसा था क्या ये, अरे बाप रे मैं तो कुछ देखा वो अलग ही था कुछ। और क्या बताऊं वृंदावन के बारे में, एक हमारे पेशेंट थे, अभी एडमिट है अभी भी वो, तो मुझे हमेशा लगता है कि जो बेचारा हॉस्पिस में शरीर छोड़ने के लिए आया, लास्ट स्टेज में आया है वृंदावन में, उसको शरीर छोड़ना है, इसलिए दूर से इतना फॉरेनर आदमी भी वहाँ पहुँचा है मेहनत करके। एक तो पहुँचना मुश्किल है बीमार आदमी को, इतना बीमारी में कौन पहुँचेगा, 18 घंटे का फ्लाइट लेके, इट्स नॉट ईजी। लगता है मज़ा कि अरे फ्लाइट से आ रहे हैं, लेकिन दिन भर फ्लाइट में बैठना और वहाँ से यहाँ आना, मतलब पूरा रस निकल जाता है शरीर से। तो वो आ भी गए, पहुँच गए, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ना ऐसे पवित्र स्थानों पर लेके जाना चाहिए, तो कहानी बताना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या स्टोरीज़ हैं। तो मैं एक पेशेंट को, वो पार्किंसन, उसका हाथ हमेशा ऐसे ऐसे हिलते रहता है, ऐसे 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 बहुत बहुत बीमार है, उसको मैं मदन टेर में लेके गया। आप में से कितने लोग मदन टेर में गए, सब लोग को ले गया था मैं उधर लेके गया, और 1-to-1 उसको बैठ के मैंने पूरी कहानी सुनाई। ही वॉज सो हैप्पी। वो अगले दिन से दिन में 3 बार जाने लगा वहाँ पर, 3 times a day तो जाके बैठना है बस। सो नाइस रिमेंबरिंग, मैंने क्या क्या बताया, उसका रिकॉर्डिंग लिया उसने और रिकॉर्डिंग सुन रहा है वहाँ बैठ के 3 बार दिन में। मतलब एक दुखी आदमी है, उसको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, इतना समस्या है उसके जीवन में, मरने वाला है वो, उसके जीवन में आनंद के फवारे फूट रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू टू मेक हिम हैप्पी बिफोर गोइंग। फिर बहुत दिन उसने वहाँ आनंद लिया, फिर मैंने बोला अभी आपको दूसरी जगह लेके जाता हूँ। फिर मैं प्लानिंग करके उसको इमली तला लेके गया। इमली तला, आप में से कितने लोग गए इमली तला? वहाँ पर चालू किया तो 3 बार वहाँ जाने लगा रोज, अपना अटेंडेंट लेके रिक्शा करके दिन में 3 बार पहुँच रहे हैं वहाँ पर, फिर कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हैं। फिर मैं वापस लौट के आया, फिर तीसरी जगह ले नहीं पाया उसको मैं, इतना वो इतना खुश हो गया उधर, मतलब यू आर सो हैप्पी आई नेवर न्यू कितनी इतनी, मतलब ऐसे अनंत स्थान है यहाँ पर, दो ही दिखाए आपको, दो खाली दो, सैकड़ों स्थान हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे हरिद्वार जाना है, जिद करने लगे थे वो। जैसे मैं तब पहुंचा नहीं था, मैं पहुंचने वाला था, लेकिन वो बहुत जिद किया उनसे कि मुझे हरिद्वार लेके जाओ मेरे को। तो फिर हॉस्पिस का रूल है ना कि आप वॉट एवर प्लीजेस द पेशेंट, पॉसिबल है हेल्थ के लिए, असिस्टेंट किया उसके लिए, गाड़ी किया और उसको भेज दिया। 17 घंटा ड्राइविंग किया उसने, मतलब ड्राइवर ने। 12 बजे रात को पहुंचा हरिद्वार, और 4 घंटे में इतना परेशान हो गया वो, पता नहीं क्यों मुझे वापस ले गया वृंदावन धाम। 4 o'clock वापस जर्नी किया 17 घंटा, रात को 9 बजे वापस हॉस्पिस में आ गया। नेक्स्ट डे मुझे, मैं उनको मिला, मतलब प्रभु जी क्यों गए आप इधर इतना दूर, क्या देखा आपने उधर, 4 घंटे में तो लौट के आए, एकदम अस्वस्थ हो गए आप, बीमार हो गए। मैंने कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे स्थान में लेके जाऊंगा आपको, आप हरिद्वार को भूल जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे वहाँ पर। और उसके बाद महीना भर कभी भी उसने बोला नहीं वापस में हरिद्वार जाना है, कभी भी नहीं बोला। मैं आई गारंटी यू विल बी सो हैप्पी हियर, आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं। यानी एक्चुअली वॉज कन्विंस अबाउट इट। आज भी वो वहाँ पर मैं नहीं हूँ, लेकिन वो अभी बोल नहीं रहा कि मुझे हरिद्वार जाना है, मुझे ऋषिकेश जाना है, ऐसा नहीं बोल रहे। मुझे इलाहाबाद जाना है, प्रयाग जाना है, ऐसा नहीं बोल रहे। मैंने कहा आप ऐसी जगह पहुँचे हो जहाँ पर वो लोग यहाँ पर आते हैं, हरिद्वार आता है यहाँ पर, प्रयाग भी यहाँ पर आता है स्नान करने के लिए, गंगा जी भी यहाँ पर प्रकट हुई है, हरिद्वार प्रकट हुआ है, ये सब यहाँ पर आए हुए हैं, और आप वहाँ क्यों जा रहे हो, वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। नंदगांव नंद बाबा को भी जाना था त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, तो कृष्ण ने बोला क्यों जा रहे हो, तो नहीं जाना है वो, स्नान करना है वहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है, पवित्र जगह है। तो बेटे ने कहा बाबा ऐसे करो आप कल जाओ, कल आज मत जाओ, कल ना अक्षय तृतीया है, बहुत अच्छा दिन है। हाँ बात तो सही है, अच्छा दिन तो है, पवित्र दिन में यात्रा करना अच्छा रहता है, सफल हो जाएगी यात्रा आपकी। तो रोज की तरह स्नान करने जब गए तो सब सीन देखा जो मैंने पहले आपको बताया, वो प्रयागराज स्वयं वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बोलते महाराज आप कौन हो, तो मैं प्रयागराज हूँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो, बोले साल भर वहाँ लोग पाप करते हैं तो सब पाप डालते हैं, तो मैं धोने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ। अच्छा तुम खुद मेरे कुंड में आ रहे हो, मैं तुम्हारे पास क्यों जाऊँ, टिकट कैंसिल विदाउट रिफंड, नो चलेगा आपको, जरूरत क्या जाने की, इतना टाइम एनर्जी स्पेंड करने के लिए। जिसके पास मैं खुद स्नान करने को जाने का प्लानिंग कर रहा हूँ, वो खुद मेरे कुंड में आके स्नान कर रहा है पाप मुक्त होने के लिए, तो मैं क्यों जाऊँ उधर। ऐसा है वृंदावन धाम। वैसे ही एक बार नंद बाबा बोले यशोदा माई को, अपना कृष्ण को, यशोदा माई को बोले कि चलो बद्रीनाथ चलते हैं। बोले क्यों, अरे हमने मन्नत मांगी थी ना कि जब बच्चा होगा, बहुत दिन से बच्चा नहीं हुआ, बुढ़ापे में बच्चा हुआ, जब बच्चा होगा तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं 4 धाम की यात्रा करूँगा, अभी तो बच्चा हो गया है, कृष्ण 7 साल के भी हो गए, अभी तो वादा पूरा करना चाहिए अपने को। तो बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो कृष्ण के कान में बात आई कि बाबा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो बाबा कहे बोले क्यों जा रहे हैं बद्रीनाथ आप, अरे बेटा मैंने मन्नत मांगी थी, तुम आए, तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी, तुम आ गए तो पूरा करना है मन्नत को भगवान के पास। नहीं 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 आप मत जाओ वृंदावन छोड़ के मत जाओ। बोले क्या करें फिर, आग बंद करो। तो उन्होंने आग बंद किया, बाद में बोलते आँख खोलो, तो आँख खोला तो क्या देखते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री सब वहाँ, गंगा जी सब जमुना जी सब प्रकट हो गए उधर पूरे पहाड़ के साथ। बोले कर लो स्नान, सब लोग तुरंत कपड़ा उतर के तुरंत दर्शन किया, स्नान किया, आचमन किया, प्रणाम किया। बोले बढ़िया है चीज़ है। बोले आप क्यों जाते हो, मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रकट कर दिया है। फिर बोले गया जाना है स्नान करने के लिए। बोले मत जाओ गया आप, आँख बंद करो। उधर गया प्रकट कर दिया कुंड के रूप में। फिर राधा रानी बोली अरे हमने तो सुना था लास्ट लाइफ में तुम राम थे। नहीं 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 मैं तो मैं किधर आऊँ, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ग्वाल बाल हूँ, नंद बाबा का बेटा हूँ, मैं किधर राम वगैरह। नहीं नहीं देखो नाटक मत करना, सच बोलना, हम आपसे बात नहीं करेंगे अगर आप सच नहीं बताएंगे तो। तो कृष्ण डर गए, अरे गोपियाँ बात नहीं करेंगी मुझसे, ठीक है ठीक है ठीक है, आँख बंद करो, अभी आँख खोलो, आप भी बंद कर सकते हो और खोल सकते हो। तो आँख जब खुली तब क्या दिखे, कृष्ण जो है वो राम बने हुए हैं, हरे रंग के धनुष लेकर। बलराम जो थे वो लक्ष्मण बन गए, छोटे भाई बनकर धनुष लेकर, जटा वटा सब पहन के और राम ने शिवलिंग को स्थापन किया और वहाँ शिवलिंग का पूजन किया तो रामेश्वर प्रकट हो गया। फिर वहाँ से उठे तो अचानक जहाँ पर खड़े थे सब लोग वहाँ पर सागर पैदा हो गया, पूरा पानी ही पानी हो गया। और आगे बताऊँ, कृष्ण बलराम राम लक्ष्मण बने, सारे ग्वाल बाल बंदर बने उनके आँखों के सामने। मतलब ये ड्रामा यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर गोपियाँ बैठी हैं प्रेक्षक के रूप में, सब लोग ड्रामा देख रहे हैं, लाखों गोपियाँ बैठी हैं, यहाँ पर ड्रामा हो रहा है, यहाँ पर पानी पैदा हो गया। तो सारे बंदरों ने मिलकर उसमें खड़क डाला और ब्रिज बनाया कुछ ही मिनटों में और उस पर चले गए, उस पर से उस पार पहुंच गए तो वहां से 10 सर वाला एक राक्षस पैदा हो गया और हा 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 करके अटैक किया उन्होंने। तो राम ने बाण मारा और रावण का वध कर दिया, सबके आंखों के सामने हो रहा है। फिर बोले बाघ, ऐसा आवाज आई जोर से, आंख बंद करो। सब गोपी ने आंख बंद किया, अभी खोलो। तो वापस कृष्ण प्रकट हो गए राम की जगह पर, लक्ष्मण की जगह बलराम प्रकट हो गए, सारे ग्वाल वाल बंदर थे वो ग्वाल वाल बन गए वापस। लेकिन रामेश्वर समुद्र सेतु बंद श्रीलंका वैसे के वैसे रह गया। मतलब अभी आपको कभी जाने की जरूरत नहीं सेतु बंद दर्शन करने के लिए, इधर आके दर्शन करने का, कामे वन में है वो, अद्भुत जगह है, बहुत अद्भुत। तो पहली बार गया था ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए देख के उसको, इतना अद्भुत लगा। फिर उसका अपने धनाधर लोगों को लेके गया मैं कई बार यात्रा के लिए, कामे वन में आदि बद्री भी कामे वन में है, केदार भी उधर ही है, सब प्रकट हो गया। तो ये सब कहानी मैंने वो पेशेंट को, डिवोटी पेशेंट को बताई कि इतना सब है आप क्यों जा रहे हो हरिद्वार, इधर ही रहो आराम से प्रेम से रहो जब तक जिंदगी है, आनंद लो, जब ठाकुर बुलाएंगे चले जाओ प्रेम से, तभी भी वहीं पर हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।